पृष्ठ संख्या 40 अध्याय 5 गीता का धर्म और दर्शन। सर्व वेदमयी गीता। श्री कृष्ण ने गीता को सर्व सब धर्मों का सार कहा है। गीता में हृदयम पार्थ। गीता को अमृत कहा है, गीता अमृतम। जिस प्रकार अमृत समुद्र मंथन से निकला है, उसी प्रकार शास्त्रों के मंथन से गीता निकला है। यह महाभारत का अंश है जो 700 श्लोकों का संग्रह है। इसी से इसे सप्तशती कहते हैं। इसे पहले सूर्य ने मनु को और फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। गीता को सर्व शास्त्र में ही कहा गया है। भारते सर्व वेदार्था भारतार्थाश्च कृतस्त्रसः गीतायामस्ति तेनेयम् सर्व शास्त्रमयी मता। इसमें सर्व शास्त्रों की भांति ईश्वर को प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं। गीता में ईश्वर प्राप्ति के उपाय को योग कहा गया है। यह वही योग है जिसके आदि वक्ता हिरण्यगर्भ हैं और जिसका वर्णन महाभारत में अन्यत्र हुआ है। यह वही योग है जिसकी शास्त्रीय विवेचना पातंजलि के योग सूत्र या योग दर्शन में किया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, इमं विविश्वते योगं प्रोक्तवान इमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्वा कवे अब्रवीता। किंतु गीता में केवल यही एक योग नहीं है, वहां अन्यत्र कहा गया है, ध्याने नात्मनि पश्यन्ति के चिदात्मनात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्ये त्वेव मजानन्तः श्रुत्वा नेभ्यः उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिः परायणाः। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि गीता में ध्यान योग, कर्म योग, राज योग, श्रवण योग तथा ज्ञान योग का वर्णन है, परंतु गीता में परस्पर विरोधी विचार पद्धतियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के आधार पर अनेक विद्वानों का मत है कि इसके ऐसे अंश विभिन्न लेखकों द्वारा विभिन्न कालों में जोड़े गए होंगे। गार्बे का मत है कि भगवत गीता मूलतः सांख्य योग की एक रचना है जिसमें कृष्ण वासुदेव संप्रदाय पीछे मिल गया। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में कृष्ण और विष्णु में तादात्म्य स्थापित करके इसे वैदिक परंपरा के अनुकूल बना दिया गया। मूल ग्रंथ 200 ईसा पूर्व में बना होगा। 2री शताब्दी ईस्वी में वेदांत के किसी अनुयायी ने इसको वर्तमान रूप दिया होगा। हॉपकिंस का विचार है कि गीता एक असांप्रदायिक रचना एवं एक उत्तरकालीन उपनिषद था जो विष्णु संबंधी कविता के रूप में विकसित हुआ। वर्तमान गीता इसी का कृष्णावतार से संबंधित संस्करण है। हुल्समन इसे बहु ईश्वरवादी कविता का वैष्णव प्रभाव से परिवर्तित रूप स्वीकार करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार कीत का कथन है कि प्रारंभ में यह श्वेताश्वतर उपनिषद की भांति एक उपनिषद था, लेकिन बाद में कृष्ण के संप्रदाय के अनुरूप इसमें परिवर्तन कर दिया गया। बार्नेट यह स्वीकार करते हैं कि विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां इसके लेखक के मस्तिष्क में अव्यवस्थित रूप से गुंथ गई हैं। ओटो का मत है कि मूल गीता ऐतिहासिक महाकाव्य का एक सुंदर टुकड़ा है जिसमें दार्शनिक या सिद्धांत संबंधी कोई साहित्य सम्मिलित नहीं था। इस मत का समर्थन जैकोबी ने भी किया है। जैकोबी का विचार है कि गीता के मूल अर्थ को दार्शनिकों ने विकसित करके इसे इसका वर्तमान रूप दिया है, लेकिन पश्चिम विद्वानों के ऐसे तर्क एवं धारणाएं भारतीय परंपराओं के विपरीत है, क्योंकि भारतीय परंपरा ने तो सदैव यह माना है कि ऊपर से परस्पर विरोधी लगने वाले तत्व रचयिता के मस्तिष्क में एक सूत्र में पिरोए से लगते हैं जो समन्वय का सुंदर आदर्श प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि कालांतर में इस ग्रंथ में कई परिवर्तन हुए होंगे, लेकिन उनका कथन है कि गीता का रचना काल ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी रखा जा सकता है। गीता प्रारंभिक उपनिषदों के बाद की और दार्शनिक सिद्धांतों के विकास और उनके सूत्र रूप में प्रतिपादन से पहले की रचना है। इसकी प्राचीन रचना शैली और अंतरंग साक्ष्य के आधार पर डॉक्टर राधाकृष्णन इसे ईसा पूर्व के युग की रचना स्वीकार करते हैं। गीता की केंद्रीय अवधारणा या योग समन्वय। वस्तुतः गीता एक योग शास्त्र है। इसमें वर्णित विभिन्न योगों में भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग एवं ज्ञान योग महत्वपूर्ण है। गीता में भी कहा गया है कि जिस योग से भगवान की प्राप्ति होती है वह भक्ति योग है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी मे। वस्तुतः सच्ची भक्ति शरणागति है। अनन्य भाव से भगवान की ही एकमात्र शरण में जाने से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा भी है, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। शोक मत करो। शोक न करने की बात एक गारंटी है कि मुक्ति भगवान देंगे ही। ऐसा किसी भी दूसरे धर्म की किसी देवता ने गारंटी नहीं ली है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मां शुचः। लेकिन गीता का योग केवल ज्ञान योग या भक्ति योग या कर्म योग या राजयोग ही नहीं है। यहाँ दो स्थानों पर योग की परिभाषा दी गई है। प्रथम परिभाषा में कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात योग कर्म कौशल है। द्वितीय परिभाषा में कहा गया है कि समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता योग है या योग समत्व है। किंतु योग की ये दोनों परिभाषाएं योग के विशेष स्वरूप को निर्धारित करने में असमर्थ लगती है, क्योंकि ये प्रायः भक्ति योग, कर्म योग, राज योग तथा ज्ञान योग में से प्रत्येक पर लागू होती है। ऐसी अवस्था में गीता के भाष्यकारों में शंकराचार्य ने केवल ज्ञान योग को, रामानुजाचार्य ने भक्ति योग को और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कर्म योग को महत्व दिया है। आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने कर्म योग, भक्ति योग तथा ज्ञान योग के कर्म समन्वय को महत्व दिया है। आचार्य मधुसूदन सरस्वती के मत की समीक्षा करने पर जान पड़ता है, इनका मत स्पष्ट अन्य सभी मतों का समन्वय है। आचार्य सरस्वती के मतानुसार गीता के प्रथम 6 अध्यायों में कर्म निष्ठा, मध्य के 6 अध्यायों में भक्ति निष्ठा और अंतिम 6 अध्यायों में ज्ञान निष्ठा का स्थान है। इस प्रकार गीता में 3 कांड हैं। प्रथम कांड में कर्म और कर्म त्याग के द्वारा तत्व पदार्थ का सप्रमाण निरूपण है। द्वितीय कांड में भक्ति के वर्णन द्वारा तत्पदार्थ का सप्रमाण निरूपण है तथा अन्य में तृतीय कांड में जीवात्मा और परमात्मा के ऐक्य का विवेचन है। संक्षेप में यही तीनों कांडों का संबंध है। कर्मोपास्तिस तथा ज्ञानम मिति कांडत्रयम क्रमात् तद्रूपाषट्दशाध्याये गीता कांडत्रयात्मिका एवमेकेन षट्केन कांडमत्रोपलक्ष्येत कर्मनिष्ठा ज्ञाननिष्ठे कथिते प्रथमान्त्ययोः यतः समुच्चयो नास्ति तयोरति विरोधतः भगवद्भक्तिनिष्ठा तु मध्यमे परिकीर्तिता। नीलकंठ ने भी अपनी टीका में आचार्य सरस्वती के मत को ही स्वीकार किया है। गीता को योग शास्त्र कहा गया है, अतः यह जानना आवश्यक है कि योग क्या है। योग दर्शन में चित्त वृत्तियों का निरोध, योग बताया गया है, चित्त वित्ति निरोध योग, पर शाब्दिक रूप से यह युज धातु से बना है। उसका अर्थ है मिलना। गीता में आत्मा और परमात्मा के मिलन के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। इस मिलन का कारण यह है कि जब जीवात्मा बंधन की स्थिति को प्राप्त होती है तब वह सांसारिक बनती है। उसकी अलग पहचान के लिए उसे एक नाम दिया गया है। वह अपने विवेकानुसार शरीर के माध्यम से सत असत कर्म करने लगती है। उसका फल भी उसी को भोगना पड़ता है। इसके कारण वह बंधन में फंसती है। यही बंधन कर्म बंधन कहलाता है। उससे प्राप्त फल कर्म फल होता है। उसको इस बंधन से मुक्त करने के माध्यम योग है। वही जीवात्मा को परमात्मा से मिला देता है। अतः योग यहाँ योग सोपान है जो ईश्वर तक पहुंचे उसे पहुंचा देता है। यह अवस्था योग दर्शन में समाधि की स्थिति नहीं है, यह मोक्ष मार्ग है। इस मार्ग के द्वारा बंधन का नाश होता है। मुख्यतः यह मार्ग तीन प्रकार का है। एक ज्ञान का, जिसे ज्ञान मार्ग कहते हैं, दूसरा कर्म का, जिसे कर्म मार्ग कहते हैं, और तीसरा है भक्ति का, जिसे भक्ति मार्ग कहते हैं। अतः मोक्ष के तीन साधन या तीन योग गीता में बताए गए हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। विभिन्न दार्शनिकों ने इन विभिन्न मार्गों को अपनी दृष्टि से विदित किया है। मीमांसकों ने तथा लोकमान्य आदि दार्शनिकों ने कर्मयोग को महत्वपूर्ण माना है, जबकि शंकराचार्य ने ज्ञान योग को और रामानुजाचार्य ने भक्ति योग को, जैसा ऊपर कहा गया है। मूल योग मार्गों को अपनाने के पीछे भी कारण है। मन के तीन अंग होते हैं, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक। इन्हीं अंगों के अनुरूप तीन योगों की मान्यता स्थापित है। जो जिस अंग को विशेष महत्व देता है वह उस योग को स्वीकार करता है। पर ये तीनों मार्गों ये तीनों मार्गे एक ही केंद्र की ओर ले जाते हैं, मोक्ष। साथ ही ये तीनों अलग अलग होते हुए भी एक ही में समन्वित है, क्योंकि शास्त्रोक्त साधन है। तीनों ही समान हैं। तीनों के प्रतिपादक कृष्ण ही हैं। तीनों अपनी अपनी रुचि के अनुकूल हैं। किसी को ईश्वर के लिए निवित्त मार्ग पसंद है, किसी को प्रवित्त मार्ग। पर संसार में ही रहकर इन मार्गों को अपनाना पड़ता है। सभी मार्ग समान फलदायक हैं। गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न किया है कि कौन श्रेष्ठ योगी है। कृष्ण ने भक्त को ही श्रेष्ठ योगी बताया है, पर आगे यह भी कहा है कि जो ज्ञान कर्म युक्त भक्ति करता है वह भक्त शत्रु तथा मित्र को समान मानता है। जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है और वह विषयों में आनंद नहीं प्राप्त करता, अनाशक्त कर्म करना योग कर्म योग है। ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करना ज्ञान योग है और भक्ति का उत्कर्ष भक्ति योग है। हम देखते हैं कि बिना ज्ञान के निष्काम कर्म नहीं हो सकता और बिना कर्म के भक्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार ज्ञान के साथ कर्म और भक्ति दोनों जुड़े होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक योग के लिए शेष दो योगों के जुटे होने की आवश्यकता होती है। इन तीनों का समन्वित रूप ही योग समन्वय है। कर्म के संबंध में गीता में बताया गया है कि वह ज्ञान से संबद्ध होना चाहिए। ज्ञान से युक्त कर्म करने पर कर्म फल की अभिलाषा प्राणी नहीं करता, तभी उसे ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति के लिए भी भक्त को कर्मों के फल से अलग रहना होता है, तभी उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब स्वतः ज्ञान की प्राप्ति तीव्र हो जाती है तब ईश्वर भक्त को ज्ञान का प्रकाश देता है। इस प्रकार यहाँ प्रत्येक योग के लिए शेष दो योगों का होना आवश्यक बताया गया है। यही योग समन्वय है। इसलिए दिखता भले है कि मोक्ष के तीन मार्ग हैं, पर अंततो गत्वा सब एक ही हैं। कहीं भी किसी में विरोध नहीं है। जिसे जो पसंद हो वह उसका अनुगमन कर लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ज्ञानात्मक विचारधारा के अनुसरण के लिए गीता का ज्ञान मार्ग है। क्रियात्मक पक्ष के अनुरूप चलने वालों के लिए गीता का कर्म मार्ग है। भावनात्मक पहलू को स्वीकार करने वालों के लिए गीता का भक्ति मार्ग है। यही गीता का योग समन्वय है। इसी को गीता का केंद्रीय दर्शन कहा जाता है। गीता शब्द को अगर उलट दिया जाए तो तागी बनता है। तागी बांग्ला का शब्द है जो और इसका हिंदी में अर्थ है त्याग। यही त्याग का उपदेश तथा गीता का मूल मंत्र है। भक्ति योग। भगवत गीता में प्रतिपादित भक्ति योग का अर्थ है भगवान के प्रति अनन्य भाव से एकाग्र होकर समर्पित हो जाना। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के विषय में स्वयं कहा है, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानीभूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अर्थात जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत निवास करते हैं और जिस सच्चिदानंद धन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। भक्ति योग को अन्य योगों की अपेक्षा गीता में अत्यंत ऊंचा स्थान प्राप्त है। यह योग अन्य योगों से सरल एवं उत्तम बतलाया गया है। इस योग का महत्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाते हुए कहा है कि जो मेरे परायण करने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझमें अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, उन चिंतन करने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उद्धार कर देता हूँ। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सम्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान की कृपा जिस पर हो जाए और जो भक्त अपने को पूर्णतः भगवान के प्रति अनन्य भाव से एकाग्र होकर समर्पित कर दे, वह एकांतिक भक्ति से भगवान को प्राप्त कर सकता है। यह भक्ति योग है जिसको वैष्णव आचार्यों ने बहुत अधिक महत्व दिया है। यही भक्ति योग पांचरात्र शास्त्र के अनुसार है। इस योग से भक्त इसी जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने इसे प्रवृत्ति मार्ग कहा है। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता रहस्य में भक्ति मार्ग पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि ब्रह्म और आत्मा में एकता स्थापित करने के लिए प्रेम पूर्वक परमेश्वर के चिंतन के मार्ग को उपासना या भक्ति मार्ग कहते हैं। शांडिल्य सूत्र के अनुसार ईश्वर के प्रति निरतिशय प्रेम ही भक्ति है, किंतु भागवत पुराण में कहा गया है कि प्रेम निर्हेतु निष्काम और निरंतर होना चाहिए। गीता में सकाम भक्ति भावना को निम्न कोटि का बताया गया है, जो दूसरी तरफ तो परमेश्वर का ज्ञान होने के कारण अपने लिए कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता और केवल परमेश्वर की भक्ति करता है, वही सब भक्तों में श्रेष्ठ कहा गया है, वही निष्काम भक्ति है। इसी निष्काम भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। स्थान स्थान पर श्री कृष्ण ने अपने लिए उपदेशों में प्रथम पुरुष का प्रयोग करके गीता में व्यक्तोपासना अथवा भक्ति मार्ग को बल प्रदान किया है। गीता में एक स्थल पर श्री कृष्ण ने भी कहा है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही हो जाता है। दूसरे स्थल पर भी श्री कृष्ण ने कहा है कि जो जिस प्रकार मुझे मानते हैं उसी प्रकार मैं उन्हें फल देता हूँ। राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक ने गीता के भक्ति मार्ग पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, गीता में प्रतिपादित भक्ति मार्ग कर्म प्रधान है और उसका मुख्य तत्व यह है कि परमेश्वर की पूजा न केवल पुष्पों फलों और मंत्रों से होती है, अपितु वह स्वधर्मोक्त निष्काम कर्मों से होती है। इसे कामना रहित की जाती है। ऐसी पूजा प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिए। जबकि कर्मयुक्त भक्ति का यह तत्व गीता के अतिरिक्त अन्य किसी भी ग्रंथ में प्रतिपादित नहीं किया गया है, तब इसी कर्म प्रधान भक्ति मार्ग नामक तत्व को गीता प्रतिपादित भक्ति मार्ग का विशेष लक्षण कहना चाहिए। भक्ति मार्ग के श्रद्धा मूलक प्रमगम्य तथा प्रत्यक्ष होने के कारण इसका आचरण करना सर्वसाधारण के लिए सुगम है। इसी से कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर एक मेरे ही शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम कृतकर्मों के विषय में सोच मत करो। भगवान की भक्ति ही मोक्ष का द्वार खोल सकती है। श्री रामानुज आदि के अनुसार गीता के में इसी पक्ष को उजागर किया गया है। यही शरणागति का उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। गीता के उपदेश का प्रारंभ युद्ध क्षेत्र में कृष्ण ने तब किया जब अर्जुन ने कृष्ण से कहा, शिष्यस्तेहम, अर्थात मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उचित मार्ग का ज्ञान कराएं। गीता के अंत में कृष्ण मामेकं शरणं व्रज, एक मेरे ही शरण में आओ का संदेश देकर अपना उपदेश समाप्त करते हैं। यही वह यह भी प्रतिज्ञा दोहराते हैं, मां शुचः, जो अच्छा बुरा कर्म तुम्हारे द्वारा हो चुका है उसका सोच मत करो, उसका मुझे समर्पण करके भूल जाओ, फिर भी मैं तुमको पवित्र बना दूंगा। इस प्रकार गीता का आदि और अंत भक्ति योग है। भक्ति शब्द का अर्थ है सेवा करना। भक्ति में भगवान के प्रति भक्त अपने को समर्पित करता है, उनमें अनन्य श्रद्धा रखता है। वह मोक्ष की इच्छा न रखकर भगवान के शरणागति की कामना करता है। इसके लिए वह विभिन्न रीतियों से भगवान को प्रसन्न करता है। इसके माध्यम है भगवान के गुणों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, पूजा, वंदन, दासता और मित्रता, श्रवणम कर्तनम विष्णोः। ये सभी साधन भगवान से प्रेम करने के हैं, इसलिए भक्ति योग को प्रेम योग भी कहते हैं। भक्ति में दो पक्ष होते हैं, भगवान और भक्त। यहाँ पूर्ण परमेश्वर की उपासना अपूर्ण जीव करता है, अतः इसमें द्वैत भाव होता है। यहाँ भक्त भगवान के स्वरूप को की उपासना करता है, चाहे मूर्त रूप में या कल्पना करके। अतः भगवान के सगुण रूप में यह वह अनुरक्त होता है। भक्ति की पूर्णता के लिए भक्त को सभी कुछ बिना किसी आसक्ति के अपने उपास्य देव के लिए ही समर्पित करना होता है। इसके उनके अतिरिक्त उसका संसार में दूसरा कोई सहारा नहीं होता। यही स्थिति अनन्य भक्ति की है। इसी को गीता में अनन्य चित भी कहा गया है। पर अनन्य चित तभी होगा जब भक्त भगवान को ही अपना सब कुछ मान ले, जो भी करे उसी को समर्पित करके करे। यही स्थिति सरलागति की है। तभी भगवान भक्त का सारा कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं और वह सभी विकारों से मुक्त हो जाता है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। उसी के उद्धारार्थ भगवान तब अनेक रूपों में अवतरित होते हैं। इसी को हम भगवान का अवतार लेना कहते हैं। भक्त को ही भगवान सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं। योगी जब अपनी सारी चित्त वृत्तियों को एकाग्र कर लेता है, तब वह आसक्ति एवं ममता रहित होता है। भक्त की सारी चित्त वृत्तियां अब भगवान के चरणों में एकाग्र हो जाती हैं, तब संसार से उसकी कोई आसक्ति नहीं रहती। यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति शरणागति भक्ति है। भक्ति योग की निम्न विशेषताएं, एक, इसमें सगुण भक्ति होती है। दो, यहाँ मन की शुद्धता और आत्मसमर्पण की भावना आवश्यक है। तीन, नम्रता इसका विशिष्ट गुण है कि भावना के सन्मुख भक्त अपने को कुछ न माने। चार, तब भगवान भक्त का सभी पाप पुण्य अपने ऊपर उठा लेते हैं। 5. उनका द्वार सभी के लिए खुला है। मूर्ख विद्वान निर्धन धनी अंत्य जगड़ आदि। 6. इसमें द्वैत भाव होता है, भक्त और भगवान। अंत में अपूर्ण भक्त पूर्ण ब्रह्म में एकाकार होने के लिए बढ़ता है। 7. ईश्वर की भक्ति का कभी अंत नहीं होता। 8. भक्ति के गुण अवर्णनीय हैं, ज्यों गूंगे मीठे फल को अंतरतम ही भावे। कर्म योग। भगवत गीता में भक्ति योग के बाद कर्म योग को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ कर्म योग की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि कर्म फल और कर्म के प्रति आसक्ति को त्याग कर भगवदाज्ञानुसार केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से बताया गया है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से ही सिद्धि अर्थात सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि संपूर्ण मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश होकर कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। भगवत गीता में उस व्यक्ति के श्रेष्ठता प्रदान की गई है जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है। यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम म्यार भतेर्जुनः कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण शास्त्र विहित कर्तव्य करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से किसी का शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायोह्य कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। कर्मयोगी की विशेषता को बतलाते हुए कहा गया है कि ऐसा साधक जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी को अपने कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर एवं आसक्ति को त्याग कर कर्म करने का उपदेश गीता में दिया गया है। ऐसा ही व्यक्ति कर्मयोगी है। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। गीता में कर्मयोग के साधक के द्वारा भगवत प्राप्ति के विषय में कहा गया है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग कर भगवत प्राप्ति के कारण शांति को प्राप्त होता है, किंतु सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर कर्म बंधन में बंधता जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। कर्म से सत्व की शुद्धि होती है, सत्व से ज्ञान प्राप्त होता है, सत्वात् संजायते ज्ञानम्। और ज्ञान के सतत ध्यान से अनन्य भक्ति रूप आनंद की प्राप्ति होती है। इस अनंत ज्ञान की उत्पत्ति सत्व से स्वीकार की गई है, परंतु उसके साथ शर्त यह है कि यदि वह सत्व श्रद्धा मिश्रित हो नहीं है तो आनंद की प्राप्ति नहीं की जा सकती। गीता से ज्ञात होता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम्, अर्थात श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है। वस्तुतः बात यह है कि पूर्णता की अवस्था में भी मनुष्य के लिए कर्म करते रहना गीता आवश्यक बताता है। उसके अनुसार बाह्य सक्रियता आंतरिक शांति के साथ कोई असंगति नहीं है। गीता के अनुसार किसी भी स्थिति में कर्म का पूर्ण त्याग संभव नहीं है। अकर्म को भी कुकर्म को समान निंदित माना गया है, यथा गहना कर्म मनोगति ही। कर्म का रहस्य बड़ा ही कठिन है। गीता में कहा गया है कि यह योग सर्वप्रथम विवस्वान को प्राप्त हुआ था, उनके ऋषि मुनियों को मिला और फिर साधकों ने उनसे ग्रहण किया। कृष्ण ने गीता में इसे कर्म से विरत होते अर्जुन को देखकर युद्ध क्षेत्र में फल की कामना छोड़कर मात्र कर्म करने का उपदेश दिया। इसी से पंडित बाल गंगाधर तिलक ने इसे कर्मयोग प्रधान ग्रंथ माना है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है कि कर्मयोग ही गीता का मौलिक उपदेश है। द होल सेटिंग ऑफ गीता पॉइंट्स आउट ऑफ द होल सेटिंग ऑफ गीता पॉइंट्स आउट दैट इट इज एन एग्जोरेशन टू एक्शन। इसकी सबसे सटीक व्याख्या प्रोफेसर हिरण्णा ने किया है कि गीता कर्मों के त्याग के बदले कर्म में त्याग का उपदेश देती है। गीता टीचिंग स्टैंड्स नॉट फॉर रिन्यूसिएशन ऑफ एक्शन बट फॉर रिन्यूसिएशन इन एक्शन। इस प्रकार गीता में कर्तव्य को कर्तव्य मानकर ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक करने का आदेश है। उसके फलाफल की चिंता का त्याग करना ही उसका मूल संदेश है। इसलिए कृष्ण ने मा शुचः सोच मत करो का उपदेश दिया है। भगवान ने बताया है कि किसी भी कर्म के लिए 5 कारक होते हैं। कर्म करने के लिए शरीर का होना आवश्यक है, यह प्रारंभिक कारक है। शरीर विहीन स्थिति में कोई काम नहीं हो सकता। जैसे हवा प्रकाश जिसका कोई देह नहीं है वह कोई कार्य नहीं कर सकते, पर शरीर भी तभी कार्य करेगा जब उसमें चेतना हो। मृतक शरीर कोई काम नहीं कर सकता, जिसमें चेतना होती है वही कर्ता होता है। शरीर भी संपूर्ण रूप से कार्य नहीं करता, कार्य करती है उसकी इंद्रियां। इंद्रियों के रहने पर भी अगर वे चेष्टा या प्रयास न करे तो कार्य नहीं होगा। इसलिए इंद्रियों के अंदर कार्य के प्रति चेष्टा अवश्य होनी चाहिए। चेष्टा को प्रेरणा मिलती है ईश्वरीय शक्ति से। इस प्रकार शरीर, कर्ता, इंद्रियां, प्रेरणा और ईश्वरीय शक्ति, ये 5 मिलकर कार्य को संपादित करते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। इसमें शरीर, इंद्रियां, प्रेरणा प्राकृतिक स्वरूप है, ईश्वर अदृश्य शक्ति के है और प्रत्यक्ष कार्यकर्ता है। अतः कर्ता में अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य के प्रति कर्तापन या अहम होना स्वाभाविक है। तभी वह कहता है कि यह कार्य हमें करना है या इसे मैंने किया है। यहाँ मैं या हम का यही बोध कर्तापन का है। ऐसे बोध से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार की सारी मूर्खता का जड़ है अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। यदि कार्य करने वाला अहंकार न करे तथा अपने को कर्ता न माने बल्कि एक व्यवस्था के अधीन प्रेरणा द्वारा उस कार्य का होना स्वीकार करे तो कार्य के पीछे उसकी आसक्ति नहीं रहेगी। आसक्ति का ही अर्थ चिपकना है, यही ममत्व का कारण है। किसी भी वस्तु से ममत्व होना ही बंधन है। जैसे यह शरीर मेरा है, यह मान लेने से कि शरीर मेरा है, शरीर से ममत्व उत्पन्न होना स्वाभाविक है। पर जब किसी कर्म में ममत्व नहीं होगा तो उसमें आसक्ति नहीं होगी, फिर उसके लाभ हानि का कोई विचार भी नहीं रह जाएगा। तब कर्म को कर्म सहज क्रिया मानकर किया जाएगा, किसी फल की कामना नहीं से नहीं। ऐसी स्थिति में कर्म करने वाले के लिए हानि लाभ बराबर है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, उसका इनसे कुछ लेना देना नहीं है। इस प्रकार किए गए काम को करने वाला अपना धर्म मानकर वह काम करता होता, जो भी करता है उसे भगवतार्पण करके करता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं। जब हम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी इच्छा से काम करते हैं तो वह काम सकाम कर्म होता है, पर जब बिना किसी उद्देश्य के तथा अपनी इच्छा के काम किया जाता है तो उसे निष्काम कर्म कहते हैं। सकाम कर्म की श्रृंखला अनवरत होती है, एक के बाद दूसरा, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत तो नहीं होता। एक के बाद दूसरी इच्छा, अतः एक कर्म के बाद उसी श्रृंखला में फिर दूसरा काम। यह एक अनवरत कड़ी है जो जीवन भर चलती है। न मनुष्य अपने लाभ के लिए कहीं रुकता है। इसलिए जैसे जैसे हम कर्म में आगे बढ़ते जाते हैं, हानि लाभ के जाल की सीमा बढ़ती जाती है और कर्ता उसमें आसक्ति के कारण फंसता जाता है। यही कर्म बंधन है। पर जब हम इच्छा विहीन लाभ हानि रहित कार्य करते हैं तो वहाँ कोई बंधन नहीं होता। यही निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म करना ही गीता की शिक्षा है। इसमें अभिप्राय है कर्मों में ममता और आसक्ति का त्याग। यहाँ कर्ता द्वारा यह भावना नहीं रखना कि इस कार्य को मैंने किया है तथा इससे हमको यह लाभ या हानि होनी है। केवल कर्म करने तक ही अपना संबंध रखना, यही मोक्ष का साधन है। इसके द्वारा वह भगवान की प्राप्ति कर लेता है। असक्तो यह चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। यह स्थिति फलत्याग कर्म संन्यास की है। यही कर्म का विलक्षण स्वरूप है। इसमें मनुष्य कर्मों के द्वारा पाप पुण्य का भागीदार नहीं बनता। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम भसा। यह मान बैठना कि निष्काम कर्म का अभिप्राय है कर्मों का त्याग, पूर्णतया भ्रामक है। गीता कर्मों से भागने की सलाह नहीं देता। संसार छोड़कर संन्यास लेने की यह सलाह नहीं देता। यह संसार में रहकर कर्मों को करते हुए संन्यास की स्थिति में रहने की बात करता है, जिसमें सब कुछ देवार्पित तथा ईश्वर की इच्छा पर आधारित माना जाता है। तभी यह कहा गया है कि अपने अपने कर्मों को करते हुए ही मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। स्वे से कर्मण्य भीरतः संसिद्धि लभते नरः। इस प्रकार कर्म योग की व्याख्या जो गीता में की गई है, उसकी मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। एक, कर्म में कर्तापन का अभाव होता है। दो, आसक्ति और ममता कर्ता में नहीं रहती, उसमें लोक कल्याण का भाव होता है। तीन, कर्म करते हुए कर्म सन्यासी की स्थिति में कर्ता होता है। चार, कर्ता सब कुछ ईश्वर का मान कर करता है, उसी को अर्पित करके करता है। पांच, कर्तव्य स्वर्ग के लिए नहीं है जैसा वेद कहते हैं, पर कर्तव्य कर्तव्य के लिए किया जाता है। ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक। छः, कर्मों के लिए इंद्रियों के दमन की बात यहाँ नहीं कही गई है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ज्ञान योग। गीता में भक्ति योग एवं कर्म योग के पश्चात ज्ञान योग का महत्व प्रतिपादित किया गया है। भाष्यकारों में शंकराचार्य ने केवल ज्ञान योग को ही महत्व दिया है। गीता में ज्ञान योग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों के गुणों में वर्तते हैं। ऐसा समझकर तथा मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एकी भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास योग, सांख्य योग इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। गीता का कथन है कि अज्ञानता के कारण ही मनुष्य अपने को कर्ता स्वीकार कर लेता है। यही जीव का अहंकार है जो बंधन का मूल कारण बन जाता है। प्रकृतेह क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं कर्ता हूँ ऐसा मान लेता है। इसी अज्ञानतावश वह अपने को सृष्टिकर्ता ईश्वर की कोटि में पहुंचा देता है, जबकि उसके द्वारा जो भी बन पड़ता है वह ईश्वर की प्रेरणा से। इसी अज्ञानता से दृष्टि दूषित एवं स्वार्थपूर्ण हो जाती है। दूषित दृष्टि से सत्य या परमात्मा का दर्शन संभव नहीं है। अतः बंधन से मुक्त होने के लिए ज्ञान द्वारा अज्ञान को हटाना आवश्यक है, क्योंकि अज्ञानता के दूर होने पर ही सत्य या परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। अज्ञान एवं बंध से मुक्त होने की इस प्रक्रिया को ज्ञान योग का नाम दिया गया है। ज्ञान शब्द की व्याख्या करते हुए गीता में कहा गया है कि धूमे न व्रियते वहनी धूमे न व्रियते वहनी यथा दर्शो मलेन च यथो बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेद मावृतम्। अर्थात जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। वास्तव में ज्ञान शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है। प्रथम अर्थ में उसका संबंध आध्यात्मिक ज्ञान से और दूसरे अर्थ में साधारण ज्ञान से या विज्ञान से इसका तात्पर्य है। गीता के ज्ञान योग में आध्यात्मिक ज्ञान और साधारण ज्ञान का समन्वय हुआ है तथा इसे ही पूर्णता तक पहुंचाने का मार्ग बताया गया है। गीता के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अज्ञानता के कारण ही आत्मा बंधन मुक्त दिखलाई पड़ता है, परंतु ज्ञान में आत्मा पवित्र होती है तथा अंतःकरण की शुद्धि होती है। अतः इसके समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विदन्ति। परंतु जितेन्द्रिय तत्पर एवं श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। वह ऐसा ज्ञान प्राप्त कर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिम मचिरेणाधि गच्छति। अतएव समत्व बुद्धि रूप योग में स्थिर होकर अज्ञान से उत्पन्न हुए संशय को हृदय में उदित हुए को ज्ञान रूपी तलवार से खंडित कर कर्म का उपदेश दिया गया है। इस प्रकार जब आत्मा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करता है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवच्च ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्। ऐसी परिस्थिति में तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही है निरंतर एकी भाव और जिनकी ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए और पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल को भी समभाव से देखने वाले होते हैं। इसलिए जिनके मन में समत्व भाव है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है तथा वे जीते हुए ही संसार से मुक्त हैं। ऐसा ही गीता का कथन है कि ज्ञान द्वारा जिस व्यक्ति ने काम क्रोध को सदा के लिए जीत लिया है वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। इस प्रकार जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं पाप जिनके या ज्ञान से निवृत्त हो गया है संशय जिनका और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिनकी। वे एकाग्र हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओ से परब्रह्म परमात्मा की प्राप्त होते हैं। इस प्रकार बाहर से विषय भोगों का न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि और भृकुटु के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई है इंद्रियां, मन और बुद्धि जिसकी, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है वह सदा मुक्त ही है। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। युच्चनेवम सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत संस्था मधिगच्छति। सर्वभूत स्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ज्ञानी आत्मा को ही सब भूतों में स्थित तथा सब भूतों को आत्मा में स्थित देखता है। परमेश्वर से संसार की अभिन्नता ही ज्ञान योग का सार है। सृष्टि और सृष्टिकर्ता में एकत्व का अनुभव इसमें किया जाता है। जो कुछ भी दृश्य जगत में है वह सब ईश्वर का ही है, ईश्वर में है। जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर ही करा रहा है आदि विचार ज्ञान योगी रखता है। वह अपना या अपने द्वारा कुछ भी किया हुआ नहीं मानता। उसको संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्म और उसकी लीला ही दिखती है। वृद्ध बालक पुरुष स्त्री कुमार कुमारी सब उसके लिए ईश्वर ही होते हैं। उनके मन में तत्त्वमसि वह तुम हो का भाव रहता है। इसके कारण भेद दृष्टि का दोष ज्ञान योग की मूल विशेषता है। कुछ जो कुछ भी है भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है वह ईश्वर ही है। जो अपनी लीला के लिए अपने को भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट किए हैं, अतः सभी में समत्व है। ऐसे में वह संसार मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है, क्योंकि वह परमात्मा का ही स्वरूप है। शंकर ने गीता को ज्ञान योग का ही प्रधान ग्रंथ कहा है। उनकी दृष्टि में गीता की मूल शिक्षा यही है। संसार के दो मार्गों में निवृत्ति मार्ग अर्थात त्याग मार्ग की ही प्रधानता है। त्याग गीता का आधार है। सांसारिक वृत्तियों का त्याग और ब्रह्म में जीव का एकाकार ही निवृत्ति मार्ग है। यही उसका मूल लक्षण है। तब किसी भी वस्तु में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। उसकी प्रवृत्ति इच्छा लगाव जो भी होती है उसे वह ईश्वर का करता है, उसी में अपने को विलीन करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए संसार का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। जो है वह ईश्वर है, उससे अलग कुछ नहीं है। यही दृष्टि ज्ञानी की होती है जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यह तो ज्ञान की अवस्था है, वह ईश्वरमय है। इसमें आंतरिक रूप प्रधान होता है। अंत में सभी वस्तुओं में ब्रह्म की ही सत्ता का यहाँ आभास होता है। वस्तु और ब्रह्म का अस्तित्व दो अलग अलग नहीं होता। यहाँ द्वैत का भाव नष्ट हो जाता है। अतः यह आध्यात्मिक ज्ञान है, पर एक ज्ञान वह होना आवश्यक है जो तर्क के आधार पर किसी वस्तु को सिद्ध करता है। तर्क के लिए आधार वस्तु का बाह्य रूप होना आवश्यक है। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय दोनों का स्वरूप दो या द्वैत होता है, दोनों में भेद होता है। इसलिए तार्किक ज्ञान ही विज्ञान है। इन दो प्रकार के ज्ञान की मान्यता गीता में दी गई है। गीता में ज्ञान से समत्व योग की बात की गई है। जो कुछ भी इस संसार में दृश्य या अदृश्य है, वहाँ तीन प्रकार का तत्व है, आत्मगत, वस्तुगत और गुणातीत। हम जिसको कह सकते हैं वह अमुक वस्तु है, वह है आत्मगत। जैसे मनुष्य, पेड़, नदियाँ आदि, ये वस्तुगत हैं। कुछ केवल भावना होती हैं, वे वस्तुगत हैं, जैसे मित्रता, शत्रु, अच्छाई, बुराई आदि। कुछ गुण होते हैं जिन्हें गुणातीत कहते हैं, जैसे सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय आदि। इन सभी में समत्व का भाव ज्ञानी रखता है। इसके लिए सभी समान है, क्योंकि सारी क्रियाएं ईश्वर द्वारा की जाती हैं। यह स्थिति या विचार स्थित प्रज्ञ का होता है। स्थित प्रज्ञ शब्द का प्रयोग सबसे पहले गीता में ही हुआ है। इसका तात्पर्य है कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो स्थिर प्रज्ञ होता है, वह भगवान की माया से विचलित नहीं होता। वह उनके वास्तविक स्वरूप को ही सर्वत्र देखता है। यही देखना ज्ञान है। चूंकि सर्वत्र ईश्वर ही दिखता है, इसलिए इसे ज्ञान योग कहा जाता है। इसकी निम्न विशेषताएं बताई गई हैं। 1. संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म में है। 2. जो भी दृश्य जगत है, वह ब्रह्म ही की ही माया है, जो क्षणिक और नाशवान है। 3. वही आत्मा हम में और वही सब में है। सब ब्रह्म स्वरूप और आत्मा स्वरूप है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा ब्रह्म का ही स्वरूप है। 4. इस मिथ्या जगत में ज्ञानी के लिए कोई नहीं होता, क्योंकि वह कुछ पाना नहीं चाहता। ज्ञान योग की प्राप्ति के लिए गीता में निम्न पद्धतियों का प्रयोग बताया गया है। 1. शरीर, मन और इंद्रियों को शुद्ध रखना, तभी ईश्वर का मिलन हो सकता है, क्योंकि ईश्वर अशुद्ध वस्तुओं को स्वीकार नहीं करता। 2. मन इंद्रियों को विषय से हटाकर ईश्वर में लगा देना, इसमें मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। 3. यह ज्ञान होना कि आत्मा ईश्वर का ही अंश है, पर यहाँ जान लेना चाहिए कि इंद्रियां चंचल है, वे ज्ञान की स्थिरता में बाधक होती हैं। गीता इसी से योगाभ्यास का आदेश देती है। इंद्रियों को उनके लिए ज्ञान के आधार पर नियंत्रित करना होता है, पर कहीं भी इंद्रियों के उन्मिलन की बात यहाँ नहीं कही गई है। वह इसी शरीर और परिस्थिति में ज्ञान की साधना की बात करता है। ईश्वर वासुदेव सर्वम, अर्थात ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। भगवद गीता में ईश्वर को पुरुषोत्तम कहा गया है। यह स्वरूप अत्यंत दिव्य है। वह संसार क्षर तथा जीवात्मा अक्षर दोनों से ऊपर है। यद्यपि दोनों ही भगवान के रूप हैं, पर पुरुषोत्तम दोनों में विद्यमान है। उनके ही अंश के दोनों ही अंशी हैं। इनका स्वरूप दिव्य है। इसी से इन्होंने अपने विराट स्वरूप को अर्जुन को दिखलाया था। भय से संतरस्त अर्जुन ने जब भगवान से अपने चतुर्भुज रूप में पुनः हो जाने की प्रार्थना किया, तब वह सौम्य रूप में प्रकट हुए, अन्यथा न जाने अभी क्या क्या दिखाते। इसलिए परब्रह्म, परम पुरुष, वासुदेव, विष्णु, परमात्मा आदि अनेक नामों से इन्हें संबोधित किया गया है। परमात्मा के दो रूपों का वर्णन गीता में अनेक स्थलों पर किया गया है, व्यक्त और अव्यक्त। जो भी संसार में प्रत्यक्ष दिखता है, वह उनका व्यक्त स्वरूप है, जैसे प्रकृति, अवयव, मूर्तियां आदि। पर जो तब शरीर में रहते हुए भी निर्लिप्त है, तटस्थ है, वह उसका अव्यक्त रूप है। यह अव्यक्त रूप तीन प्रकार का होता है, सगुण, निर्गुण, सगुण, निर्गुण। व्यक्त रूप की अपेक्षा अव्यक्त रूप अधिक श्रेष्ठ है। कारण यह है कि जो भगवान का व्यक्त रूप है, वह उनकी माया है। भगवान ने स्वयं अपने को अव्यक्त कहा है। व्यक्त स्वरूप को मानने वाले को उन्होंने बुद्धिहीन कहा है। इसी प्रकार ईश्वर की दो प्रकृतियां बताई गई हैं, परा और अपरा। परा प्रकृति जड़ है और अपरा प्रकृति चेतन है। अपरा को भगवान की निकृष्ट प्रकृति मानते हैं। परमात्मा इन दोनों के ऊपर है। वह न जड़ है न चेतन, बल्कि दोनों उन्हीं में समाहित हैं। इसलिए ईश्वर का स्वरूप दो प्रकार का है, विश्व रूप और विश्वातीत रूप। यही कारण है कि गीता में भगवान ने अपने को संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त बताया है तथा सृष्टि भी तभी सभी क्रियाओं का कर्ता कहा है। यह रूप उनका विश्व रूप है, पर इससे भी परे उनका एक रूप है, वह रूप सर्वोच्च है, उसे किसी दूसरी शक्ति की आवश्यकता नहीं, वही वह दूसरे तत्वों को शक्ति देता है। सूर्य में वही प्रकाश है, अग्नि में वही चमक है, इस प्रकार वह संसार के अलग होकर सब कुछ अपने में ही धारण करता है। चूंकि वह संसार में व्याप्त है पर उसकी सत्ता उसी तक सीमित नहीं है, इसलिए ईश्वर के इस रूप को विश्वातीत रूप माना गया है। यह स्पष्ट है कि जब गीता में यह कहा जाता है कि ईश्वर संसार में निहित है, और फिर वही यह भी कहा जाता है कि ईश्वर की सत्ता संसार से परे है, तो यह प्रथम दृष्टि में से सर्वेश्वरवाद पैंथेइज्म का प्रतिपादन करता है। पर दूसरी दृष्टि में जहां वह ईश्वर की सत्ता संसार से परे मानता है, वहां विश्वातीत का प्रतिपादन करता है। इसके इस विश्वातीत को व्यक्तित्व रहित, निर्गुण, निराकार और अव्यक्त भी माना जाता है। इस विश्वातीत रूप को जानने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। भगवान ने जब अर्जुन को अपना दिव्य रूप या विश्वातीत रूप दिखाना शुरू किया तो अर्जुन को कुछ भी नहीं दिख रहा था। तब उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी जिससे वह उनका विराट रूप देख सके। उनके इसी रूप में सबका विलय होता है। भगवान की सृष्टि के रचनाकार हैं और उन्हीं में यह सृष्टि विलीन भी हो जाती है। ऊपर हमने देखा कि ईश्वर के रूप में विषय में यहाँ कोई एक मान्य सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया है, कई सिद्धांतों का एक साथ ही प्रतिपादन इस ग्रंथ में हुआ है। ईश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद, विश्वातीतवाद, इन विरोधी मतों के विषय में गीता में कोई कारण नहीं बताया गया है। इस विषय में यह मूक है। अतः डॉक्टर दास गुप्ता के अनुसार हम गीता में सर्वेश्वरवाद, ईश्वरवाद तथा विश्वातीतवाद का समूहीकरण पाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ईश्वर के अवतारी रूप का भी ज्ञान सर्वप्रथम गीता से ही होता है। ईश्वर ने अपने को अजन्मा, अजो अपि कहा है, फिर भी उन्होंने कहा है कि मैं माया के कारण जन्म लेता हूँ। संभवाम्यात्ममायया, यही जन्म उनका अवतारी रूप है। अवतारी रूप वह इच्छानुसार मत्स्य, कच्छ, वाराह, नृसिंह आदि विविध रूपों में लेते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। पर ऐसा क्यों? संसार की उत्पत्ति और लय के आधार होने के साथ ही वह इसके नियंत्रक भी है। नियंत्रण या धारण हेतु उन्होंने धर्म का स्वरूप अपनाया है, धारयतीत धर्मः। पर जब कभी यह नियंत्रण ढीला हो जाता है तब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म का अभ्युत्थान होने लगता है। तब तब भगवान धर्म की स्थापना, उत्थान तथा उसकी अभिवृद्धि के लिए अवतार धारण कर धरती पर आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस समय वह मनुष्य रूप धारण करके संसार में अवतरित होते हैं। इसमें सभी प्राणियों का कल्याण ही उसका कारक होता है। सर्वभूत हिते रताः, भगवान ने स्वयं स्वीकार किया है कि परित्राणाय साधुना, साधुओं की रक्षा करने के लिए तथा विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के नाश के लिए और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। संभवामि युगे युगे, बार बार मैं जन्म लेता हूँ। शंकराचार्य ने भी इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा है कि जब अधर्म से धर्म की पराजय होने लगती है तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। जीवात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। जैसे परमात्मा अमर है वैसे ही जीव भी कभी विनष्ट नहीं होता, वह सदा सदा बना रहता है। अजायतो म्रियतो वा, यह कभी न जन्म लेता है न कभी मरता है, वह यह शाश्वत है। शरीरी या शरीर नष्ट होता है, नामी या नाम मिट जाता है, पर आत्मा नहीं मिटती न नष्ट होती है। तब फिर वह आत्मा दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। जीर्ण निवासांश्च यथा विहाय, जैसे पुराने जीर्ण वस्त्र को छोड़कर प्राणी नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही मृतक शरीर से निकलकर यह आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, पर इस पर किसी भी बाह्य आघात प्रतिघात का प्रभाव नहीं होता। यह सांसारिकता से दूर है, यद्यपि संसार में विद्यमान है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, सारे विपदाओं के प्रभाव से यह परे है, इसी से यह नित्य सनातन अचल और स्थिर है। यही कारण है कि पुनर्जन्म की अवधारणा गीता में है। जब मरेगा नहीं केवल वह शरीर बदलेगा, तो यही पुनर्जन्म है। जीव की अमरता ही पुनर्जन्म का कारण है। पुनर्जन्म तब तक होता रहता है जब तक उस आत्मा के अंश को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। मोक्ष तब तक नहीं मिलता जब तक भगवान की शरणागति नहीं होती, चाहे भक्ति से, ज्ञान से या कर्म से। इन सभी मार्गों की चरमता ही मोक्ष है। चरमता की प्राप्ति मार्ग में कर्म बंधन व्यवधान है। कर्म बंधन के अनुसार ही पुनर्जन्म होता है। जब कर्म बंधन टूट जाता है तब कर्म और जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। इसी अवस्था में भगवान की शरणागति होती है, जो मोक्ष है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यह शरणागत की स्थिति एक जन्म में नहीं हो पाती। अभ्यास से क्रमशः जीव इसकी ओर बढ़ता है। वह जब तक वहां पहुंच नहीं जाता तब तक वह संसार में भटकता ही रहता है। इस भटकाव में वह पूर्व जन्मों के क्रमानुसार फलों को भोगता है, यद्यपि वह नहीं जानता कि पूर्व जन्म के उसके कर्म कैसे रहे हैं, पर ईश्वर तो सर्वव्यापी है, वह सब कुछ जानता है, वही उनको जन्म देता है। इसी से कृष्ण ने कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जब तक गुण और कर्म के चक्र का अंत नहीं हो जाता, मोक्ष नहीं मिलता, तब तक पुनर्जन्म होता रहता है। जैसे ही कर्म फल प्राप्त होते हैं, जन्म का बंधन समाप्त हो जाता है, तभी मुक्त जीव बंधन मुक्त होकर निर्मुक्त ईश्वर में विलीन हो जाता है। इसी को कबीर ने कहा है कि एक अंड ओंकार मह ताजक भया पसार, कर्म का बंधन टूटे कैसे। यह एक गंभीर प्रश्न है। इंद्रियां चंचल हैं। गीता में इनकी समता घोड़ों से की गई है। जैसे घोड़ों को लगाम देना जरूरी होता है, इंद्रियों को भी उसी प्रकार नियंत्रण में रखना आवश्यक होता है। इसके अभाव में अनेक दुर्वृत्तियां बढ़ती जाती हैं। तब मोह क्रोध लोभ काम आदि वासनाएं घर कर लेती हैं। इनका बढ़ना ही मनुष्य के लिए खतरा है। रामचरितमानस में कहा गया है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के द्वार, ये पाप की भागीदारी दिलाते हैं। इसी से इनको नियंत्रित करने का यह निर्देश है, पर इंद्रिय निग्रह की बात नहीं की गई है। यह तो उसकी अति है। गीता में किसी भी पक्ष में अति का ज्ञान नहीं मिलता, अतः इन्हें जीतने का बात यहाँ की गई है। इन्हें जीतने के लिए तीन मार्ग भक्ति कर्म और ज्ञान सुझाया गया है। इन पर विजय प्राप्त कर लेने पर ही प्राणी को मोक्ष मिल जाता है। गीता में एक उपदेशक और एक श्रोता, उपदेशक भगवान कृष्ण हैं और श्रोता अर्जुन हैं। अर्जुन की चित्तवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए ही श्री कृष्ण यह उपदेश देते हैं। इस प्रकार यहाँ श्री कृष्ण परब्रह्म रूप में है और अर्जुन जीवात्मा रूप में। जीवात्मा को सही मार्ग पर रखने के लिए ही ईश्वर उसे मार्ग प्रदर्शन करते हैं, कर्म का उपदेश देते हैं। यह उपदेश तो वहाँ युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिया गया था, पर यहाँ जीवन क्षेत्र में आज सबके लिए है।